रूपम तस्याग्रजवुरीपुरीं माथुरीं गोष्ठवासिनीं राधाकुण्डं गिरिवर्महो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीत कृपया श्रीगुरु तन्नतो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरयायुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् आदरणीय वैष्णव सज्जनों, बेटे और बेटियों, छह दिन से लगभग पिछले छह दिनों से दिल्ली में कहीं दो बार कहीं इससे भी अधिक प्रतिदिन नियमित रूप से प्रोग्राम चल रहे हैं। कड़ाके की ठंडी भी पड़ रही है। कुछ लौकिक क्रियाएं भी हैं जिनको बाध्य होकर के करना पड़ता है। आज सारा दिन हमको बेकार के काम में लग गया। झूठ मूठ अमेरिका जाने के लिए ग्रीन कार्ड में हमारा बेकार का समय पूरा नष्ट हो गया। सोच रहा था कि बेकार हम किस लिए कर रहे। एक तो छह दिन यहाँ हमको बहुत भक्ति स्तर से नीचे उतर कर बोलते बोलते हृदय नीरस हो गया, किंतु लोगों का स्तर इतना ही है। बहुत लोगों का स्तर बहुत नीचे है, इसलिए बात होकर के हमें ब्रज की भावों से ब्रज में रहते समय जो हरि कथाएं होती हैं, विशेष करके जो ब्रजमंडल परिक्रमा में हमारी हरि कथाएं हुई, तो उससे हृदय सरस रहता है। और जब इधर उधर में विदेशों में भी जाते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, तो अपना स्तर नीचे कमाना पड़ता है। लोग समझेंगे नहीं, आज सोच रहा हूँ अंततः थोड़ा सा अंतिम प्रवास, आज का प्रवास अंतिम है यहाँ इस बार में, क्यों नहीं मधुर न समापये तो कुछ थोड़ा सा मधुर भाव, भक्ति का कुछ सरस भाव जिसको चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे कुछ कहा जाए। आप लोग ये समझिए, कोटिश्वपि महामुने, कोटि कोटि करोड़ों लोगों में से कोई एक साधन करता है, और ऐसे करोड़ों करोड़ों साधन करने वालों में से कोई एक बिरला ही सिद्धि करता है, उसको सिद्धि होती है। सिद्धि होने वाले में से भी नारायण के जो उन्मुख होने होते हैं, नारायण की सेवा प्राप्त होते हैं, वो बहुत कम है, और नारायण के सेवकों में से करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों में से कोई एक कृष्ण का बिरला ही एकांतिक भक्त होता है। इन भक्तों में भी यदि परम सौभाग्यवान कोई हो, रसिक भक्तों का, सात्विक भक्तों का, वैष्णवों का संग मिले और उनके संग में भागवत की कथा हो, चैतन्य महाप्रभु की कथा हो, तो वे कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति के तरफ में झुकते हैं, उनको लोभ होता है। ऐसे भक्त जगत में बहुत विरले हैं। पहले ये समझिए, यहाँ पर दो चार आदमी हैं जो कुछ समझेंगे, इसलिए यहाँ पर बतला रहा हूँ। भक्ति कहते हैं किसे? एक व्यक्ति ने कहा, ये कंबल में लोम निकालने से सभी कंबल के लोम ही निकल जाएंगे तो कंबल रहेगा? कंबल किस चीज का बनता है? लोम से ही, भेड़े के या और दूसरे किसी के बनता है। इसमें से यदि एक एक लोम निकालने लग जाएं, तो कुछ बचेगा नहीं। उसी तरह से भक्ति की परिभाषा जो चैतन्य महाप्रभु जी के अनुगामी रूप गोस्वामी ने दी, और सचमुच में इसको हम परिभाषा को लेकर के देखें तो जगत में ऐसे बिरले भक्त बहुत कम होंगे जो चैतन्य महाप्रभु की लाइन में आते हैं। जिसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, जिस प्रेमा भक्ति को देने के लिए, चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर में से कोई एक भी आचार्य वैधि भक्ति देने के लिए नहीं आया। उच्च कोटि का प्रेम और उच्च कोटि के प्रेम में भी गोपी प्रेम देने के लिए आए थे। अनर्पित चरण चिरात करुणयावतीर्ण करो, आप लोग चैतन्य चैतन्य जरूर पढ़े होंगे, तो उसमें ये पहले ही आदि खंड के पहले ही अध्याय में ये है, पीछे से तृतीय अध्याय में इसकी पूरी व्याख्या दी गई है। चैतन्य महाप्रभु गोपियों प्रेम, गोपी प्रेम को वितरण करने के लिए जगत में आए थे। इसके पहले जितने भी आचार्य हुए हैं वो लोग सब और भक्तियों को देने के लिए आए थे, जिसमें जगत में कुछ प्रचार हो रहा है, किंतु महाप्रभु उस चीज को केवल देने के लिए नहीं आए, रूप गोस्वामी और उनके परिकर। भक्ति का डिफिनेशन उन्होंने दिया, खूब अच्छी तरह से समझेंगे सुनेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम। जैसे कहा जाए पानी, पानी की परिभाषा क्या है? तरल तो सरसों का तेल, किरासन का तेल, पेट्रोल इत्यादि सभी तरल होते हैं। पानी का डेफिनेशन क्या है? जल का उस परिभाषा को लेकर के जब लगाएंगे और वो परिभाषा जिसमें परिपूर्ण हो, तब उसे पानी, जल, एक्वा वाटर इत्यादि कह सकते हैं। वो तो एक ही चीज है। पानी का दूसरा नाम है जीवन। जीवन है वह तरल पदार्थ, विशुद्ध पदार्थ, जिससे हमारा जीवन, प्राण हमारा रहता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। केवल मनुष्य ही नहीं, सारे प्राणी। उसमें पानी सबसे, पानी में भी समुद्र का पानी भी है तो वो नहीं आएगा इसके अंदर, वो तरल है, वो भी पानी है, वो नहीं आएगा। वो जीवन नहीं है। जीवन कब होगा? यदि उसको किसी प्रकार से रिफाइंड किया जाए, भेपर बन जाए, नमक रह जाए, ऊपर में बादल के रूप में उठ जाए और फिर वो बरसे तो वो पानी होगा, जल होगा, जिसे हम जीवन को धारण कर सकते हैं। अब उसी तरह से जब भक्ति की परिभाषा बतलाई गई, अन्याभिलाषिता शून्य, कृष्ण की प्रीति हो, इसके अतिरिक्त कोई भी क्रिया, कामना, वासना न हो, केवल कृष्ण ही प्रसन्न हो, उसमें कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, व्रत, संसारिक, औपाधिक भक्ति इत्यादि के द्वारा वो भक्ति ढकी हुई न हो, पूर्ण रूप से निर्मल हो, और ये दो हुए उसके गौण लक्षण। अब उसका लक्षण आता है कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, आनुकुल्लेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, कृष्ण के लिए रुचिकर हो, जो तन से, मन से, वचन से और भावना से जो भी कृष्ण को प्रसन्न के लिए क्रियाएं होती हैं वो कृष्ण के लिए रुचिकर हो और अनुकूल हो। अनुकूल किसको कहते हैं? कृष्ण को अच्छी लग सकती है कोई चीज, किंतु कृष्ण को प्राण मारने के लिए, कृष्ण को रुचिकर न लगने के लिए की गई हो, कृष्ण को चारण मुष्टिक से लड़ना अच्छा लग रहा है किंतु वो लड़ रहे हैं कृष्ण को मारने के लिए, इसलिए ऐसी नहीं। यशोदा जी कृष्ण को बांध रही हैं, तन नहीं पिला रही हैं, डांट रही हैं, बांध रही हैं, कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण के लिए हो सकता है कि रुचिकर नहीं है, किंतु यही भक्ति की चरम डेफिनेशन में आती है, कृष्ण के प्रीति के लिए है ये। अब इसी चीज को तीन जो लक्षण बतलाए, दो गौण, कृष्ण के लिए ही हो, अपने किसी भी कामना वासना की पूर्ति के लिए न हो, है ना, और दूसरा ज्ञान कर्म इत्यादि के द्वारा ढकी न हो, ये दो गौण, और कृष्ण के लिए प्रीतिकर और रुचिकर, जो तन मन वचन की क्रियाएं हैं और भावनाएं हैं, यमन की क्रिया भी नहीं है, भावनाएं जो तन से नहीं हो रही है, मन से भी नहीं हो रही है, इस अतिरिक्त है, तन मन वचन से भी अतिरिक्त भावनाएं हैं, कोमल हृदय की भावनाएं, वो कृष्ण के लिए हो, सबसे ये भक्ति हो। अब इसको हम घटा रहे हैं, भागवत में ध्रुव का चरित्र आया, जब उस पर देखते हैं तो उसमें कर्म और ज्ञान की प्रधानता हो गई और राज्य मांगा अपने लिए, कृष्ण के प्रति के लिए, भगवान के प्रति के लिए नहीं मांगा, इसलिए इसको हम कैंसिल करते हैं, समझिए। इसलिए कृष्ण की सेवा हो, कृष्ण के लिए मंदिर हो, कृष्ण के लिए भागवत हो, ये सब क्रियाएं हैं, हरिनाम कर रहे हैं, किंतु उसके द्वारा अपना सुख चाहते हैं तो कृष्ण के लिए सेवा की गई भी, मंदिर बनाना भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसमें भीतर में आ गया, अपना हरिनाम करते हैं झूला झूला करके, और जब आदमी नहीं रहते हैं तो रख देते हैं, तो ये भागवत की क्रियाएं हैं, है? ये क्रियाएं हैं, ठीक है, मालूम तो होता है जो भगवान के लिए है और भगवत संबंधी है, किंतु इसको भक्ति नहीं कहते, इस चीज को अच्छी तरह से समझिए। सारा संसार इसी में डूबा हुआ है, बहुत कम बिरले हैं जो इसे ऊपर में उठे हुए हैं, ध्रुव इसमें डूबा हुआ है, इसलिए इसकी भक्ति भक्ति नहीं हुई, शुद्ध भक्ति नहीं हुई, मिश्रा भक्ति हुई, कर्म ज्ञान इत्यादि मिश्रित और अपने सुख के लिए हुई, ऊपर से मालूम होता है जो भगवान का ध्यान, चिंतन और भजन किया, इसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। ऐसी जिसकी भक्ति है वो भक्ति नहीं कहलाई गई, पहले समझ रखिए। इससे ऊपर थोड़ा सा उठे प्रहलाद जी आते हैं, प्रहलाद की भक्ति कैसी है? वो क्या करते हैं? तन मन वचन से भगवान के लिए करते हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। यदि भगवान ने नृसिंह देव जी ने कहा जी अपने लिए कुछ बर मांगो, तो उन्होंने कहा जी प्रभु मैं बनिया नहीं हूं, मैं कोई बर नहीं चाहता, बस आप प्रसन्न हो। नहीं क्या फिर भी कुछ मांगो? लाचार किया उन्होंने तो कहा दिया कि विश्व के जितने व्यक्ति हैं हमारे पुण्य को हमारी भक्ति को लेकर के मुक्त हो जाएं, आपकी सेवा में नियुक्त हो जाएं, और मैं उन सब का दुख लेकर के दुख भोगूं। इसलिए ये भक्ति है, इसमें अन्य अभिलाष कुछ नहीं है, कोई भी अभिलाष नहीं है, किंतु इसमें ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान की प्रधानता कैसी? सर्वत्र वो भगवान का दर्शन करते हैं प्राणियों के अंदर में, और प्राणी मात्र में वो भगवान का दर्शन करते हैं। कौन भगवान का दर्शन करते हैं? जो उनके अपने इष्ट देव हैं। उनके इष्ट देव कौन है? उनमें प्रेम का कहां तक प्रादुर्भाव है? इसलिए नृसिंह भगवान तो भगवान हैं, किंतु कृष्ण के अंश और कला हैं, अंश है, उनमें प्रेम का प्रकाश नहीं बना। इसलिए ज्ञान की कुछ प्रधानता होने से, ज्ञान माने कृष्ण भगवान हैं, वे जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि कर सकते हैं, इसलिए इस ज्ञान के द्वारा उनकी भक्ति जो है वो ढकी हुई है। वो कृष्ण सामने आने पर भी उनको हाथ जोड़ करके स्तव करते हुए उनको साष्टांग प्रणाम करके आप भगवान हैं, इसलिए इनकी भक्ति को भी हमने कैंसिल करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अनुरूप नहीं है। अब चलिए इससे आगे वृत्रासुर का प्रसंग आया है। उन्होंने कहा है वृत्रासुर चित्रकेतु महाराज थे, उमा देवी का अभिसंपात ग्रहण कर, बिना कारण ही उन्होंने अभिसंपात दिया, उसको ग्रहण कर लिया। भक्त लोग जहां कहीं भी रहते हैं, लोक में परलोक में जहां भी रहे, भगवत सेवा में भगवत प्रेम में डूबे रहते हैं। किसी भी जोनी में भी रहे तो उनको जोनी भी वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की थी, प्रभो मेरे वचन सब समय आपका गुणानुवाद करें, हमारे समस्त इंद्रियां आपकी सेवा करें, और मन के द्वारा सब समय आप ही का गुणानुवाद चिंतन कर सकूं, सारी वृत्तियां आपके रंगों में रंग जाए। विशेष करके जैसे पंखहीन पक्षी शावक बच्चा अपनी मां के लिए बिलबिलाता है, ऐसे मेरे बच्चे आपके गुणानुवाद के लिए बिलबिलाएं। किंतु बच्चा बिलबिलाता है कि इसलिए अपने मैया के लिए, मैया आएगी तो कुछ खिलाएगी, और वो भी खिलाएगी कैसे? अपने से अलग की चीज, कोई कीड़े फतिंगे कुछ ले आकर के खिला देगी। इसलिए कुछ वासना थी, उन्होंने कहा जा नहीं ऐसा नहीं, कैसा? जैसे बछड़े डकाते हैं मैया के लिए, मैया उनको क्या पिलाती है? बाहर का चीज नहीं खिलाती, क्या कर खिलाती है? अपना स्तन। किंतु खिलाती तो दूध, दूध के लिए डकरता है ना, मैया के लिए डकरता है। मैया के लिए मालूम होता है जो डकर रहा है, किंतु मैया के लिए नहीं, किसके लिए? वैसे भगवान के लिए कोई डकरे किंतु अपने लिए डकरे, अपने सुख के लिए, तो वो भक्ति नहीं होगी। इन दोनों चीजों को भी हम कैंसिल कर रहे हैं। अब फिर चलिए तीसरा उपमा उन्होंने दिया, जैसे प्रिया अपने प्रियतम में से भी छूटकर उसी का चिंतन करती है, मिलने पर उसकी सेवा करती है, और मन से सब बोली से सब समय उन्हीं के गुणानुवादों का, प्रियतम कैसे होंगे, प्रियतम कैसे होंगे? जब आ जाते हैं तो उनको उनकी सब प्रकार से सेवा करती है और मन से उन्हीं का चिंतन करती है, कब आएंगे, कब आएंगे, कैसे सेवा करूंगे, ठंडा पानी रखूं, गर्म पानी रखूं, अभी तो ठंड पड़ रही है, अब कैसे पानी रखूं, उनको क्या खिलाऊं। यह प्रियतम का, प्रियतमा का ये प्रियतम के प्रति है, ये उनका चित्र केतु महाराज का। किंतु इसमें स्पष्ट नहीं हुआ कि राम के प्रति है, न कृष्ण के प्रति है, न किसके प्रति है, न रुक्मिणी सप्तभामा की भांति है, न गोपियों की भांति है, न सीता की भांति है, ये कुछ इसमें प्रकट नहीं हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लाइन में ये भी नहीं आए, इसलिए इसको भी हम लोग कैंसिल करते हैं। इतनी ऊंची भक्ति को भी महाप्रभु जी ने कैंसिल कर दिया। यो बाज्य आगे कहा रा रामानंद संवाद में पढ़े होंगे, विषय लंबा खिंच जाएगा, इसलिए सर्व सहज रूप में हम आगे चल रहे हैं। बतला रहे हैं जिस प्रेम में षोडशोपचार से भगवान की पूजा की जा रही है, षोडशोपचार से मन लगा करके पूजा की जा रही है, किंतु उसमें प्रेम नहीं है, कर्तव्य ज्ञान सब कुछ है, तभी महाप्रभु के विचार से वो भक्ति भक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है। इसलिए बोले जैसे अच्छा कुछ तो हुआ किंतु और आगे बढ़िए, अन्याभिलाषिता के क्षेत्र में आया, कोई अन्याभिलाषिता नहीं है, ज्ञान कर्म नहीं है, किंतु इसमें प्रेम का विकास नहीं है, इसलिए इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़िए, कृष्ण भक्ति रसभाविता मतिः क्रियतां कुतोपि यदि लब्धते तत्र मौल्यमपि मूल्यमेकलं जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। रामचंद्र जी के प्रति हनुमान का प्रेम है ना? प्रेम है, क्या करते हैं, अपनी शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी, संबंध क्या है, ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनका दास हूं, नित्य दास हूं। क्या करते हैं, कभी कंधे पर ले चलते हैं, कभी उनके लिए सब प्रकार की सेवाएं करते हैं, पाद मर्दन करते हैं, सेवा करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, सीता जी की चोरी होने पर प्राणों पर खेलकर सीता जी का पता लगाया और सब सेवाएं करते हैं, तो इनमें प्रेम भी है, प्रेम की कमी नहीं है, कोई अभिलाषा भी नहीं है, ज्ञान कर्म कुछ भी नहीं है, किंतु प्रेम का विकास जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं उस प्रेम का विकास नहीं, इसमें भी कभी कभी ये भगवान है रामचंद्र ये भावना आ जाती है, कभी कभी इनकी इच्छा होती है रामचंद्र जी से मैं खेलूं और गले से लगा लूं, किंतु संकोच के मारे नहीं लगा पाते, अन्नाभिलाष नहीं है, ज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रेम भी है किंतु प्रेम का इतना विकास नहीं हुआ, क्यों, उसमें कुछ भगवत्ता का ज्ञान है, हमारे प्रभु जो हैं वो साधारण नहीं है, कभी कभी भगवान भी ऐसी भावना आ जाती है, और दास प्रेम तक ही उनका प्रेम सीमित है, राम को गले नहीं लगा सकते, कोई चीज उनको मिली खाने के लिए और थोड़ा सा लिया बहुत मधुर लगा वो राम को नहीं दे सकते, राम के कंधे पर नहीं चढ़ सकते, गले में नहीं मिल सकते, इसलिए मन महसूस करके रह जाते हैं, इसलिए हमको भी ऐसी भक्ति नहीं चाहिए, बहुत ऊंची चीज है, वैकुंठ से भी ऊपर हम चले गए हैं, हमारी भक्ति भक्तिलता बढ़कर के गई, जो रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मांड को भेद करके चली गई, वैकुंठ को भी, परब्रह्म को भी भोज करके अयोध्या तक गई, किंतु इसमें प्रेम का जो विकास अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण संग तो है नहीं, कृष्ण के अंश है राम, अंश या कला, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् करोति भुवनेश, किंतु कृष्ण समोद्भव भवत् परमः पुमान् जो गोविंदमादि पुरुषम तमः। ये कृष्ण के अंश हैं। कितने हैं? तीन बार राम लेने से, राम नाम लेने से एक बार कृष्ण होता है। अर्थात राम के जो प्रति प्रेम है उसका तीन गुना कीजिए तो वो कृष्ण में आएगा। तीन गुना कैसे? बारह रस हैं। कौन कौन बारह से रस? शांत, दास, सख, वात्सल्य, मधुर, ये पांच मुख्य। हस्त, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये है सात। ये गौण रामचंद्र जी में इस बारहों में से पूरा मिला करके कितना है? शांत है, दास भी है और सख का आधा या वात्सल्य का आधा और आगे नहीं है। एक तरह से तीन हुआ, तीन चौ का बारह, करीब करीब तीन चार गुण अधिक कृष्ण में पूर्ण मधुर रस तक है। बारहों रस परिपूर्ण मात्रा में है। इसलिए तीन बार राम लेने से एक बार त्रिरावित्त तु जत्फलम एक आवित्त तु कृष्ण ही कप्रयच्छति। एक बार कृष्ण नाम लेंगे तो तीन बार राम नाम हो जाएगा। अब किस लिए ये बतलाया ना? उनमें दास्य हो सकता है, सख का आधा, विभीषण से अग्नि की साक्षी रख करके राम ने मित्रता की सुग्रीव से, किंतु कभी वो सखा का व्यवहार हुआ नहीं। सखा का व्यवहार चरणों में सप्त में गिरे रहते थे, कभी जूठा खाया कभी नहीं, कभी चरणों में गिर रहे तो उठा करके अंक में कस लिए यहां तक किया बस, कभी अपने समान सिंहासन पर बैठा लिया या सिंहासन उतर करके उसी गुरु के साथ में बैठे। यदि लक्ष्मण को देखा जाए तो इनसे भी श्रेष्ठ हैं, भैया हैं, भैया मित्र होता है, किंतु होते हुए भी राम के दास थे। सीता जी उनकी पत्नी हैं, मालूम होता है जी मधुर रस की हैं, किंतु सीता जी दासी हैं, घर से बाहर कर सकते हैं, गोपियों को बाहर कर सकते हैं, है मजाल कृष्ण का। गोपियां कृष्ण को कह देंगी तू हमारे कुंज से निकल जा, तेरा खाती पीती पहनती नहीं है, कह देंगी वो। इतनी शक्ति रखती हैं, समर्थ रखती हैं, प्रेम है उनके अंदर में। उनको कभी भगवान समझा ही नहीं, लक्ष्मण जी भी भगवान कभी कभी समझ लेंगे। सख का आधा भाव, इसलिए ये भी चैतन्य महाप्रभु का अभिष्ट नहीं है। हमारे आचार्य लोग ये देने के लिए नहीं आए। अब और थोड़ा सा आगे बढ़िए, द्वारका में पहुंचिए। प्रेम है, अढ़ाई रस से भी अधिक बढ़ गया। वहां पर शांत, दास्य, सख और मधुर भी है आधा। रुक्मिणी जी तो नहीं, किंतु सत्यभामा जी मान करती हैं। प्रेम अगाध प्रेम है। सीता जी से भी तुलना करने से सीता जी से बहुत गुना उनके प्रति। राधा जी की छाया है ये। रुक्मिणी है, ये कौन है? चंद्रावली जी की छाया है। दोनों में कम ही अंतर है। यहां मर मधुर रस है, किंतु स्वकीय मधुर रस। स्वकीय मधुर रस किसको कहते हैं? प्रिया प्रियतम है, किंतु विवाह बंधन से बढ़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। कौन? सत्यभामा रुक्मिणी और कृष्ण भी विवाह बंधन में वैदिक रीति से पिता माता ने इनको कन्या दान किया है कृष्ण के लिए, इसलिए विवाह के बंधन में है। विवाह के बंधन में होना माने पति स्त्री का प्रभु है और पति उसकी दासी है, वो सेवा करेगी। यही हमारी वैदिक धारा है। बराबर हो सकते हैं, आदर देंगे, किंतु पति पत्नी का परिवर्ष करने के लिए बाध्य है। स सारी जिंदगी उनकी जितनी चीजें हैं वो उसको लाने के लिए देने के लिए उसकी के लिए बाध्य है और पत्नी उसकी सेवा करने के लिए बाध्य है, दोनों मिल करके एक बन करके चलते हैं। यहां तक तो मर्यादा हुआ, अर्थात विवाह बंधन मर्यादा का है, इसलिए वह प्रेम मर्यादा के द्वारा बाधित है, बाधित बने समझ रहे हैं, बधा हुआ है, आगे नहीं बढ़ने पड़ता। सीता जी के चरणों में वन चलते समय में उनके चरणों में कुछ लग गया कांटा, ओह करके बैठ गई। रामचंद्र जी चल रहे थे, बस झट से पीछे मुड़े और पैर से कांटा ले जाना चाहा, किंतु सीता जी ने रोक दिया, पैर नहीं रख लिया। रामचंद्र जी भी, लक्ष्मण जी चाहते थे जो निकाल दूं, निकालने दिया, बड़ी मुश्किल से अपने आप निकाला। राम भी मर्यादा में बढ़े हैं, सीता भी बन जाएंगे, और यदि कृष्ण और राधा जी रहते तो क्या होता, राधा जी कृष्ण के अंक में उनके सिर पर पैर रख देती, जरे जल्दी से निकाल है? जल्दी से, और कृष्ण भी जल्दी से जल्दी करते।